ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में पुरानी व्यवस्था को वापस लाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शांति कायम नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार आतंकवाद स्वायत्तता को फिर से पनपने नहीं देगी और भाजपा सरकार आरक्षण प्राप्त गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल और दलितों सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इससे पहले जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 267 नामांकन वैध पाए गए जबकि 62 पर्चे खारिज किए गए। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए कुल 329 नामांकन पत्र भरे गए थे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 9 प्राथमिकी दर्ज की है। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 350 करोड़ रूपये की लागत से बने 210 बेडों की क्षमता वाले 2 सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। श्री नड्डा ने दरभंगा में एक समारोह में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में स्नातक मेडिकल सीटों में 88% की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। अगर घोष ने अगले 72 घंटे के अंदर नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। अपने प्रवास के दौरान क्राउन प्रिंस भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में आज तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलों का बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है जिससे वे प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता प्रवीण कुमार और होकातो होतोझे सेमा से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने 40 साल की उम्र में अपने पहले ही पैरालंपिक में पदक जीतने के लिए सेमा के प्रयासों की सराहना की। पेरिस पैरालंपिक में भारत के नवदीप ने पुरुष भाला फेंक F41 स्पर्धा के फाइनल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। पहले शीर्ष पर रहे ईरानी एथलीट को अनुचित आचरण के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। 30 वर्षीय नवदीप का 47.32 मीटर का थ्रो F41 स्पर्धा में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। वहीं सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 फाइनल में कांस्य पदक पर कब्जा किया। उन्होंने 24.75 सेकंड में रेस पूरा कर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत अब तक इस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक समेत 29 पदक जीत चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।